अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा दिल जो है वो तब्दील हो जाए, बुराई की से अच्छाई की तरफ आ जाए, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। ऐसे बैठे बिठाए तो दिल तब्दील या उसके ऊपर जो आई हुई धूल है, जो मिट्टी है, वो तो नहीं जा सकती। बिल्कुल ये ऐसा है जैसे आप ज़िंदगी किसी और तरह करें और अल्लाह ताला की बारगाह में जब जाके दुआ करें तो और चीज़ों की करें। आप अपनी ज़िंदगी में झूठ बोलें लेकिन वहाँ जब अल्लाह के सामने जाएं दुआ करें तो वहाँ कहें कि भाई अल्लाह ताला मुझे जो है झूठ बोलने से बचा, या इस तरह की दुआ करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की बहुत ज़रूरत है। तो आइए आज का दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी जो हमारे जो ऐब हैं उनको कम कर सकें। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आपकी खिदमत में खुशामदीद और बहुत बहुत सुबह खैर और बहुत सी मुस्बत एनर्जी आपकी तरफ भेजता हूँ, ताकि आपका आज का प्यारा सा दिन बहुत प्यारा, एनर्जी से भरपूर और खुशियों से भरपूर गुजरे इंशाल्लाह। लेकिन जो है इन खुशियों में खुशियों देने वाले को नहीं भूलना चाहिए। और एक जो चीज़ मैं बताता चलूँ जो बहुत ही अहम है, वो ये है कि रुबाब भी यहाँ बैठी हैं।
बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहमियत दे दी मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीनो हज़रात, और मैं प्यारे प्यारे अज़ीज़ नाज़रीन की खिदमत में सुबह खैर पेश करती हूँ। इस उम्मीद से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि अभी जो आपने एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लेके आए, ये पूरे दिन बनी रहे।
बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपसे भी रुबाब पूछूंगा, अपने नाज़रीन से भी पूछूंगा, और आप जवाब दे सकते हैं फ़ोन करके, SMS करके, और जिस जो दिल में आपको जो तरीका दिल में आए, यूट्यूब पर कमेंट करें, फेसबुक पर, फेसबुक जो है मेरे पास यहाँ पर ऑनलाइन होती है, लाइव होती है। सवाल ये है, और सवाल जो है वो बहुत अहम है, वो ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छी बात मुंह से निकालें, हमेशा कोशिश करें कि अगर कोई मुश्किल भी पेश आ गई है तब भी अच्छी बात मुंह से निकालें, और बजाय इसके कि कहें कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मुश्किलें ज़्यादा हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, कोशिश करें ये कहें कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई मुश्किल आ भी गई है, पैसे नहीं हैं, एक बड़ा दिलचस्प बात है कि मैं एक बार के अपने दोस्त को कह रहा था कि जी पैसे नहीं है, फलान चीज़ लेनी है, पैसे नहीं है, तो उसने कहा कि मत कहो कि पैसे नहीं है, ये कहते रहोगे तो पैसे बिल्कुल ही नहीं होंगे तुम्हारे पास। ये इस बात को आप लोग मानते हैं या?
जी, तो एक अच्छी बात है, हमेशा कहते हैं कि बी पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव ही सामने आएगा जो आपकी है। अच्छी बात, या आप अच्छी बात करें या अच्छी एनर्जी दूसरों को दें, तो आपकी ज़िंदगी में उस एनर्जी के असरात आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल। और दूसरा कहते हैं कि जब आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर, तो बजाय इसके कि इस तरह दुआ की जाए कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात दूर कर दे, कहते हैं कि बहरहाल मेरी नज़र है, मैंने सुना है इसके बारे में, कि आप जो है मुश्किल का नाम लेके वहाँ पर बयान करें, या अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए या मैं ये चीज़ ख़रीद पाऊँ या कुछ भी, तो उस चीज़ का बाकायदा तौर पे सही तरीके से उसको बयान किया जाए उस दुआ को, क्योंकि उस दुआ करने में भी खुद जो है एक एनर्जी मौजूद होती है जब आप एक पूरी दुआ करते हैं। मिसाल के तौर पे आप दुआ करते हैं कि जी मैं इन अल्लाह ताला मुझे जो है एक महीने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि जी मेरे पास जो है मर्सिडीज बेंज हो, ठीक है, तो बहरहाल इसको पूरी तरह जो है अब मर्सिडीज बेंज का S500 है, पता नहीं कौन कौन से मॉडल है, मॉडल नंबर बोल के जो है दुआ करनी।
बिल्कुल, और बात कर वैसे, और हम आपकी बात के दरमियान, अगर मैं बोलूँ आप दुआ करने से इंसान को कितनी हिम्मत मिलती है, आपने कभी इस बात का जायजा लिया हो?
बिल्कुल,
आप जब दुआ खुदा की बारगाह में करते हैं, एक हिम्मत, एक एनर्जी आपके साथ हो लेती है, और ये बहुत जरूरी है। जैसा खुर्रम भाई ने बताया, दिल से आप दुआ कीजिए, दिल से मांगिए, अल्लाह ताला की जो कहते हैं यहाँ देर है अंधेर नहीं, और जो हमारे हक में बेहतर होगा हमें जरूर देगा, ये बात तो है।
बिल्कुल आपने ठीक बात की। और दूसरा रुबाब होता ये है कि जब इंसान का एक बिलीफ होता है एक ऐसी ज़ात पे जिसके बारे में हम सबको ये पता है कि वो सबका मालिक है और सारी चीज़ें उसके हाथ में हैं, तो जब आप उसकी बारगाह में जाके दुआ करते हैं तो खुद एक सुकून मिलता है इंसान को, तो इसमें कोई वो शक ही नहीं है। और दुआ करनी चाहिए, बारहा दुआ करनी चाहिए, आप बैठे बैठे दुआ करें, नमाज के बाद दुआ करें, रोजे के बाद दुआ करें, लिंक करते रहें, ये एक जो है राबता जो है वो
बरकरार रहना चाहिए,
कटना नहीं चाहिए।
पर
इस पर भी बात चलेगी, और हमारा हफ्ते का मौजू चल रहा है खुशकिस्मती, किस्मत क्या होती है, खुशकिस्मती क्या होती है, बदकिस्मती क्या होती है, इस पे जो हमारी बात चल रही थी, और इंशाल्लाह इस पे आपकी, आप लोग क्या कहते हैं ये भी हम सुनेंगे, और अपनी बात भी इंशाल्लाह करेंगे, और अपने जो माहिर हजरात हैं उनसे भी इस मामले में इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग लेंगे एक छोटा सा वक्फा, और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप लोग प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और अपने नजरात का इजहार कर सकते हैं। जी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। किस्मत की मैंने कहा बात हमारी चल रही है, और आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख रहे हैं हमारे हफ्ते का मौजूद जो है वो किस्मत है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? किस्मत कुछ लोग कहते हैं बुरी है अच्छी है, मेरी किस्मत में तो वो ही लिखे हैं, क्या लिखे?
कुछ लोग जो होते हैं किस्मत को मानते भी नहीं है,
कुछ लोग किस्मत को मानते ही नहीं है
जी, बोलते तो नहीं भाई हमने जो किया है वो था और है और किस्मत तो होती ही नहीं है। बहुत से लोगों को देखा गया है बोलते हुए इस बात के।
लेकिन किस्मत मेरे ख्याल में तो किस्मत वो चीज है जो हम लोग खुद करते हैं,
बिल्कुल
उसका कुछ ना कुछ नतीजा
नतीजा जो निकलता है वो किस्मत है। बिल्कुल, ये हमारे नज़र में ये है, बहुत से लोगों की नज़र में होता है कि किस्मत होती नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं बोलते हैं मेरी तो किस्मत है ही ख़राब, शुरू से ही ख़राब है।
ये भी एक बात है। और मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि मौला जब किस्मत लिखी गई है ऊपर, हमारी जिंदगियाँ लिखी गई हैं, तो दुआ करने की क्या ज़रूरत है? तो इमाम ने फरमाया कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें तुम्हारी किस्मत में लिखी गई हैं, लेकिन जब तुम दुआ करो तो तब वो तुम्हें जाके मिले।
बिल्कुल जी, बहुत
तो ये इस चीज़ को समझने की बारह जरूरत है। और इसके साथ एक और जो चीज़ है मेरे जहन में जो हमेशा आती है वो ये है कि किस्मत इंसान खुद बनाता है। कुछ चीज़ें जैसे कि कल भी हमारी बात हुई, कुछ चीज़ें तो फिक्स हैं, जैसे मौत का वक्त है वो जो है फिक्स है, पर बहुत सी चीजें फिक्स
पहले से तय हो गई हैं। बिल्कुल,
लेकिन बहुत सी चीजें इंसान की जिंदगी में ऐसी हैं जिनको हम तब्दील कर सकते हैं, और उनको तब्दील करने के लिए एक अच्छी नीयत, एक अच्छे दिल, एक अच्छी सोच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में इकट्ठी चलती हैं।
और अच्छी एक आप ये बोल सकते हैं मुस्बत एनर्जी, हिम्मत का भी होना जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे तो मिला ही नहीं है, मेरी किस्मत में था ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन इस बात का नाजरीन ने हमें खास ख्याल जो रखना चाहिए वो ये है कि देखिए जोर बाजू इंसान अपनी मेहनत से जो लेता है वही उसकी किस्मत है। खुर्रम भाई ने कहा आप जो करते हैं या नहीं करते उसका नतीजा हमारी किस्मत
है। एक तो बात है कि आपके बाजू में कितनी जान है, दूसरी जो बात है ठीक है आप जोर लगाते हैं और आपका काम जो है नहीं होता, तो ठीक है एक शख्स होता है वो बोलता है कि जी भाई मेरी किस्मत ख़राब है फला, लेकिन बारह इसमें भी है कि अल्लाह ताला का इम्तिहान हो सकता है इसमें। और इसके अलावा एक और जो चीज़ हो सकती है वो ये हो सकती है कि अल्लाह ताला हदायत करने वाला है, हो सकता है वो चीज़ जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं। ये दो चीज़ें तो इधर आ गई। दो जो बात असल में यहाँ पर करना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ किसी जगह तक आप नहीं पहुंच सके तो उसमें कहीं ना कहीं इंसान की, एक शख्स की कोशिश में कहीं ना कोई मसला होता है। ये रुबाब ये बात जो है हमें मानने की जरूरत है,
या खुरम कोशिश होती है या हालात का भी काफ़ी तासीर रहता है इंसान के ऊपर। कभी आप देखे एक देखिए कि मिसाल के तौर पे अगर किसी को डॉक्टर बनना है या घर के हालात या माली हालात की वजह से या एक जिम्मेदारी की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर बात वही आ जाती है हम किस्मत बोलते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ों का आपस में जुड़ना,
बिल्कुल
जुड़ के एक एम या एक रास्ते की तरफ चलना बहुत जरूरी
बिल्कुल
है।
बिल्कुल ये बात आपने अच्छी की कि हालात का भी असर होता है, लेकिन फिर भी रुबाब मेरे ख्याल में देखें आप खुद इस बात को मानती हैं कि बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी मुश्किल हालात में बड़े पले बड़े, और उसके बाद जो है इन्होंने सरकारी स्कूलों कॉलेज से पढ़े, और उसके बाद जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़े और डिग्रियाँ ली उन्होंने, बड़ी बड़ी शख्सियाँ हमारी तारीख में मौजूद हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मानता। जाहिर बात है एक शख्स जिसके पास 10 ट्यूटर घर में बैठे हुए हैं और उसको एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसने डॉक्टर बनना है, अलबत्ते हो सकता है वो भी डॉक्टर ना बन सके।
आपकी बात में यहाँ पे एक बात आ जाती है कि वही बात है, पुराने लोगों का जोश और जज्बा, मेहनत और लगन थी उनमें, ठीक है। अब आजकल की मैंने ये नहीं बोलना नहीं चाहूंगी, अभी हमारे नाजरीन को वो हो जाए कोई बुरा ना लगे, लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल में ये बात नहीं है। अब देखा जाए तो नहीं है, नहीं करना
सही है।
लेकिन पहले ये था कि वो जुस्तुजू, वो लगन थी, फिर बात वही आती अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बना देते हैं। लेकिन अब यही है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, फला सब्जेक्ट में फेल हो गए,
ठीक है
टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इस तरह हो गया।
इसी बात की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था कि अगर आप किसी चीज़ में कहीं कामयाब नहीं हो पाते तो 5 मिनट इससे पहले कि हम ये कहें कि हमारी किस्मत ख़राब है, ये मसला था, फला मसला था, 5 मिनट सोच लें कि आया क्या हमारी कोशिश में, जो हमने स्ट्रगल की है, जो हमने मेहनत की है, उसमें तो कोई मसला नहीं था क्या?
जी
तो
बिल्कुल,
ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इसका इसके बारे में समझना, इसके बारे में सोचना
सोचना बहुत
बहुत
ज़रूरी।
मेरे ख्याल में हम लोग आज से ठान लें इस बात को कि अगर कहीं कोई काम हमारा नहीं हो पाता तो हम लोग फौरन जो है, बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं,
ये 5 मिनट बैठ के सोच लें कि
पांच मिनट
कहाँ
बैठ के
कहाँ
सोच
कूटाई
लें,
रह गई
बिल्कुल
हमसे। बिल्कुल,
नुकसान तो इसमें नहीं है, हो सकता है शायद आपकी वाकई गलती हुई ना उसमें, वाकई जो है शायद अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा हो, या शायद वो चीज़ आपके लिए बेहतर ना हो,
बिल्कुल इस
आपने तो
बात
कोशिश कर ली,
जी
बाकी अल्लाह ताला जो मालिक बैठा हुआ है। बारह
बिल्कुल
यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इस्फहान की सैर करनी है, तो
जी
चलते हैं इस्फहान की सैर करते हैं, और हम लोग जो है थोड़ी चाय शाय पियेंगे, आप लोग चलें इस्फहान की सैर करें। जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आप लोगों ने इस्फहान की सैर कर ली, अब हम लोग चलेंगे थोड़ी सी मेडिकल साइंस की सैर करेंगे, बच्चों की मुश्किलात, बच्चों की परेशानियों की सैर करेंगे, और उनके हल के लिए जो है वो हमने डॉक्टर आकला किमी को यहाँ पर बुलाया है, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे, चलते हैं रुबाब के पास।
बहुत शुक्रिया खुर्रम। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है इतवार का दिन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे फरिश्तों का दिन, जो कभी कभार बहुत तंग करते हैं, अगर उनको कोई मसला हो तो उन मसाइल के बारे में हम डॉक्टर आगला हकीमे से पूछते हैं और हल निकालते हैं कि भाई किस तरह उनको चुप कराया जाए, किस तरह उनके मसाइल का हल ढूंढा जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह,
बहुत बहुत खुश आमदीद कहूँगी,
बहुत शुक्रिया।
और आज का जो टॉपिक आपने चुना है बच्चों की खांसी के मुताबिक,
जी
वैसे मौसम भी सर्दी का है और लगा रहता है, तो डॉक्टर साहब खांसी किस किस्म की होती है, अकसामे हैं इनके बीच में या नहीं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नाज़िर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। देखिए खांसी खुद जो है वो एक अलामत है, बीमारी नहीं है। जैसे बांस जैसे सर दर्द अगर हम उसको ले लें तो वो अलामत भी हो सकती है और बीमारी भी हो सकती है, लेकिन खांसी से नहीं, खांसी जो है वो एक अलामत है किसी बीमारी की या
जो आने वाली है,
जो आ चुकी थी।
अच्छा, आ चुकी है
जी। और जो है या हो सकता है कि रिएक्शन हो बॉडी के, या जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है निज़ाम तनफ्फुस है उसके रिएक्शन हो, या एक बीमारी की अलामत है या निज़ाम तनफ्फुस के रिएक्शन है। खांसी जो है वो हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है, बहुत सारे मौक़ों पे खांसी जो है वो एक अच्छी चीज़ है। इससे जो है जो हल्क मुंह गला जो निज़ाम तनफ्फुस के जो ऊपर वाले जितने भी जो सिस्टम है उसकी सफाई हो जाते हैं, तो इसलिए खांसी हमेशा जो है वो ख़राब चीज़ नहीं है, इससे जो है एक बहुत सपोर्टिव चीज़ भी है।
डॉक्टर साहब अक्सर एक देखा गया है खुश खांसी होती है,
जी
एक
जी
बलगम वाली होती है, मुझे पता नहीं इस तरह की, तो इनमें फ़र्क है या ये इकसाम है इसकी?
जी बिल्कुल, अभी उसके तरफ भी आएंगे, मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता दूँ कि खांसी जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है।
अच्छा,
देखिए जो है खांसी के तीन जगहों से जो है वो खांसी जो है प्रोड्यूस हो सकती है, या तीन मेन रीजंस की वजह से। एक अपर रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है हमारे पास, जैसे मुंह है, नाक है, हल्क है,
इसमें अगर आपने बताया
जी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे या बीमारी हो या रिएक्शन, ठीक, यानी कोई चीज़ अंदर जाए और बदन जो है वो रिएक्शन, जिस्म जो है वो रिएक्शन दिखाए, तो हम उसको कहेंगे रिएक्शन। एक लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें जो है ट्रेकिया है, सांस की नाली, और फिर फेफड़े है, ठीक। अब एक और थर्ड चीज़ जिसकी वजह से खांसी हो सकती है, जिसको बहुत सारे लोग मिस करते हैं या उनको पता नहीं होता है, वो निज़ाम इन्हज़ाम की वजह से भी खांसी हो सकती है,
खाने पीने की वजह से,
निज़ाम इन्हज़ाम में प्रॉब्लम की वजह से,
प्रॉब्लम हो जाए,
यानी अगर किसी को रिफ्लक्स हो और वो उस रिफ्लक्स जो है वो बहुत आगे तक रहे, यानी उस मामूलन रहे, या बच्चे में जो है, बच्चों में खास तौर पर नौजायदा बच्चों में अगर रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो या बड़ों में, तो उसकी वजह से जो खाने के ज़रात या जो चीज़ें मैदे से वापस गज़ा के नाली में आ जाते हैं, तो वो हो सकता है हल्क तक आ जाए।
अच्छा,
जब हल्क तक आते हैं तो हो सकता है वो वहीं पे रिएक्शन दिखाए और खांसी प्रोड्यूस हो जाए, हो सकता है वो हल्क से जो है ट्रेकिया में जाए, सांस के नाली में जाए, और फिर रिएक्शन के तौर पर जो है वो खांसी होना शुरू हो जाए। तो ये तीन, यानी खांसी की जो प्रोड्यूस होने की वजूहत है, ये तीन जगह है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि खांसी जो है वो इकसाम, जी खांसी के अब सिर्फ दो अगर हम मेन इकसाम बताएं तो यही है कि खुश खांसी है या बलगमी खांसी है, एक ये है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास और भी खांसी के इकसाम है, जैसे खांसी अगर है तो साथ में जो है उसके फेफड़ों की आवाज़ कैसी है, हो सकता है जो है वो बिल्कुल खुश खांसी ना हो, बिल्कुल बलगमी खांसी भी ना हो, हो सकता है बेज़ाहिर जो है वो बच्चा खुश खांसी करे या बड़े जो भी हो, लेकिन अंदर से जो है उसके आवाज़ आ जाए, जैसे जो है वो कोई
बिल्कुल सांस लेते वक्त भी देखा है अक्सर जो बच्चे होते हैं वो अजीब सा खरखर सी आवाज़ सी यहाँ से आ रही होती सीने में से, ठीक, तो वो बलगम वाली खांसी भी
हो सकता है कि वो बलगम हल्क में हो सकता है कि जो सिक्रीशन होते हैं, अब वो सिक्रीशन नॉर्मल सिक्रीशन भी हो सकते हैं, हो सकते हैं वो रिएक्शन एलर्जी की वजह से हो, اور ہو سکتا ہے کہ نزل زکام وائرل جو نزل زکام ہوتا ہے یا بیکٹیریل جو نزل زکام اس کی وجہ سے ہو, یعنی جب بھی آواز آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سیکریشن ہے, وہاں پہ لیکوڈ ہے, یعنی وہاں پہ جو ہے یا بلغہ میں کچھ وہ خشک نہیں ہے, یعنی وہاں پہ کچھ ہے جو کھانسی کے ساتھ جو ہے وہ باہر آنا چاہ رہے لیکن آ نہیں پا رہی ہے. تو جو ہے ایسے صورتحال میں پھر ہم کھانسی کو نہیں روکتے ہیں. اگر کسی جو ہے وہ بلغمی کھانسی ہو خاص طور پر بچے کو یا بڑوں کو, یا وہ اس کے ساتھ آواز آ جائے, تو اسے ایسی دوائیں نہیں پلائے جاتے جس میں جو ہے وہ کھانسی کو ہم بند کریں, کیونکہ اگر بند کریں گے تو وہ بلغم اور وہ جو سیکریشن ہے وہ وہی پہ رہیں گے.
ڈاکٹر صاحب یہاں تک تو بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ کھانسی کے بارے میں اور بھی بات چلائیں گے. جی خورم کیا کہنا ہم نے؟
جی بالکل, آپ لوگوں کی گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی. یہاں پر ہم لوگ چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور تھوڑی سی کریں گے ہندوستان کی جلدی جلدی سے سیر, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہم لوگ آ گئے اسٹوڈیو تہران میں دوبارہ, اور چلیں گے رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کو جاری رکھیں. جی رباب,
جی ڈاکٹر صاحب ہم کھانسی کے بارے میں بات کرتے ہیں, بلغم کھانسی کے بارے میں تو تھوڑی ہم نے بات کر لی, اب خشک کھانسی کی طرف آتے ہیں.
جی ابھی جو ہے ویسے اگر ہم وجوہات پہ بات کریں, چاہے وہ بلغمی کھانسی ہو یا چاہے خشک کھانسی ہو, تو اس کے دونوں کے ہو سکتے ہیں کہ وجہ جو ہے وہ نزلہ زکام ہو جو وائرل ہو سکتے ہیں, بیکٹیریل ہو سکتے ہیں, یا ہو سکتے ہیں کہ الرجی ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو الرجی اور نزلہ زکام ہوتے ہیں معمولاً شروع شروع میں خاص طور پر نزلہ زکام کے بھی خشک کھانسی ہوتے ہیں اور الرجی کے بھی خشک کھانسی ہوتے ہیں, تو ان دونوں میں ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جائے, فرق کیسے کیا جائے؟ ہوتا یہ کہ اگر کسی کو الرجی ہو یا تو وہ کسی خاص موسم میں جو ہے وہ الرجی اس کو ہو جاتے ہیں, زیادہ تر جو ہے یا بہار کے موسم میں ہو جاتے ہیں یا خزاں کے موسم میں جب پتے جڑ رہے ہوتے ہیں یا پھول نکل رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم. لیکن اکثر ٹائم جو ہے ہم ان دونوں میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے
کہ یہ الرجی کی وجہ سے
الرجی کے ہے یا نزلہ زکام کے ہے. اب اگر الرجک ہو, نزلہ زکام کی یہ ہے کہ اگر وائرل ہو تو وہ ایک خاص ڈیوریشن تک رہتے ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ایسے کھانسی جو نزلہ زکام کی وجہ سے شروع ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے شروع ہو جائے لیکن دو ہفتے سے زیادہ چلے بچوں میں, تو آپ ضرور جو ہے وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ بعد میں جو ہے, یعنی پہلے شروع تو وائرل سے ہوا ہے. وائرل کا یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے, بس ایک خاص ڈیوریشن ہوتے ہیں, وہ اگر گزر جائے تو پھر بچہ یا بڑے جو ہے ابھی اس کی طرف آؤں گی کہ جو ہے اس میں کیا کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ ڈیوریشن آسانی سے گزرے,
ختم ہو جائے. ٹھیک,
ختم یعنی اسٹاپ نہیں, جو ہے آسانی سے گزرے, زیادہ تنگ نہ
پڑے,
زور نہ پڑے. جو ایک جو ہے اگر دو ہفتوں سے زیادہ رہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ اس وائرل میں جو ہے سپر امپوز ہو چکے ہو کوئی جراثیم, اس پہ بیکٹیریا کو اس پہ سپر امپوز ہو چکے ہو, تو پھر ایسے صورت میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اس کا لینا ہے. خاص طور پر اگر گلے میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے تو اگر اس کو ہم ٹریٹ نہ کریں صحیح طریقے سے, اس کا علاج نہ ہو جائے, تو ہو سکتا ہے وہی بیکٹیریا جو گلے میں درد کے باعث بن چکے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ ہارٹ کے جو انفیکشن ہے اس کے وجہ بنے. ہو سکتا ہے کہ وہ گردوں کے انفیکشن کی وجہ بنے, یعنی خون کے تھرو جائے وہاں سے, تو وہاں پر جو ہے وہ جا کے کلوننگ شروع کرے. تو اس لیے جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر کھانسی کو جو ہے اس کو دبانے کی, ہر کھانسی کو دبایا نہیں جانا چاہیے. جو خشک کھانسی ہے وہ زیادہ تر اگر بچے کو تنگ کرتے ہیں یہ وہ, تو ایسے صورتحال میں جو ہے جتنے بھی آپ لکوڈس گرم, خاص طور پر گرما گرم جو ہے وہ لکوڈس بچوں کو جتنے پلائیں گے وہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے.
جن ہو گیا چائے ہو گیا,
جی ہاں جو ہے گرم چیزیں جو بھی لکوڈس فارم میں ہو, ہوتا یہ ہے کہ اچھا اس میں جو ہے وہ بالکل ان کے سوپ میں جو ہے وہ مسالے وغیرہ نہیں ڈالنے چاہیے, خاص طور پر مرچی وغیرہ, کیونکہ وہ خود باعث بن جاتے ہیں کہ ریئیکشن کے طور پر اور بھی کھانسی
زیادہ کرے.
جی ان کو زیادہ کرے. اگر خشک کھانسی ہے تو اس کے لیے بھی لکوڈس اچھے ہیں, کیونکہ وہ اس ناحیے کو جو ہے وہ ایک قسم کے موئسچرائزر کے کام جو ہے وہ نمی دیتی ہے وہاں پہ, اس کو موئسٹ رکھتے ہیں اس جگہ کو. لیکن اگر بلغمی کھانسی ہو تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ بلغم کو جو ہے پتلا کر دیتا ہے اور اس کو نکالنے میں جو ہے وہ آسانی رہتی ہے. اب ایک یہ بھی ہے کہ اسٹیم لے لینا چاہیے جن گھروں میں, اچھا جو ہے بھی ہمارے پاس ٹائم
بتا رہے ہیں کہ ہمیں چلنا ہے خورم کی طرف. جی خورم.
جی بالکل, میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا وقت لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا پروگرام, اور ہم لوگ چلتے ہیں ایل سی ڈی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ آج میں کیا آپ لوگوں کے لے کے آئے. جی بہرحال پہلی جو چیز یہ جو تصویر جو ہے لیچی کی انہوں نے سٹارٹ میں لگا دی ہے, لیچی کے بارے میں بات نہیں کریں گے, اب یہ بات کریں گے ننھے منے بچے جو روتے ہیں بہت زیادہ, اور جو ہے یہ کیوں روتے ہیں یہ اس کے بارے میں ڈاکٹر حکیمی بات کر چکی ہیں. और ये भी बता चुकी हैं बारह उनको कैसे जो चुप करवाया जाए, मैं सिर्फ याद दहानी के लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जी कहा जाता है कि बच्चा जब रो रहा होता है, छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, बच्चा जब रो रहा है तो उसको अपने सीने के साथ लगाएं। उसकी वजह यह है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो माँ की दिल की धड़कन को सुनता है और वो उसके लिए जो है आरामिश, उसको जो है सुकून देती है वो आवाज़ होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि लोरी सुनाई जाती है हमारे यहाँ, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बेहतर होता है। कहा जाता है कि एक ऐसी लोरी जो हमेशा बच्चे को सुनाई जाए, ऐसा कोई कोई तराना या ऐसी कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे को रिपीटली सुनाई जाए, उससे जो है बच्चे को सुकून मिलने मिलता है। बहरहाल बिल्कुल इसी तरह कहा जाता है कि जैसे बच्चे जो है अक्सर घर के अंदर जो अप्लाइंसेज वगैरह इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज पर मौजूद होती हैं उनकी कुछ की उनकी आवाज़ सुन के भी उनको सुकून मिलता है। जैसे कहते हैं वॉशिंग मशीन की आवाज़ जब आ रही होती है तो बच्चों को उससे भी जो है सुकून मिलता है। बहरहाल तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें एक रिदम मौजूद हो उसको, उसकी वजह से जो है बच्चों को जो है बहुत सुकून मिलता है। उसके अलावा एक और जो चीज़ कही जाती है वो ये है कि बच्चे को हमेशा कोशिश की जाए कि उसको हल्की हल्की जो उसके कमर पे थपकी लगाई जाए, ये भी बाइस बनता है कि बच्चा जो है उसको जो है थोड़ा सुकून मिलता जाए। उसके अलावा कहा जाता है कि उस बच्चे को जो है आप अपने हाथ में उठा के जो है थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाएं, उसकी वजह से भी उसको सुकून मिलेगा, रोना उसका बंद हो जाएगा। या ऐसी जो चेयर्स होती हैं जिसको इजी चेयर कहा जाता है, जो आगे पीछे जो है हरकत करती हैं, उस पर बैठ जाएं आप खुद और बच्चे को भी बिठाएं और हिलाएं, उसकी वजह से भी। या अगर बच्चा आपका थोड़ा बड़ा है तो उसको जो है एक छोटा सा झूला है उस पर भी रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी में ले जाएं बच्चे को, उसको थोड़ा वहाँ घुमाएं तो उसकी वजह से भी वो जो है उसका रोना बंद हो जाएगा। और एक और जो चीज़ है वो ये है कि आप उसको जो है कार्ट में जो बच्चों की होती है उसके अंदर डाल के जो है भी घुमा सकते हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि बच्चे के पेट को और कमर को मसाज दें, अगर हल्का सा गर्म जो ऑयल है उससे, उसकी वजह से भी बच्चे को रोना जो है उसका बंद हो सकता है। खाने पीने जो खाने पीने का जो जो पोजीशन है बच्चे की या दूध पीने की पोजीशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की जाती है कि बच्चे की जो दूध पीने की पोजीशन है अगर उसको भी थोड़ा सा तब्दील किया जाए तो वो भी बहुत बेहतर हो सकता है, यानी रोने के लिए वो जो है रोने को बंद करने के लिए वो भी बहुत बेहतर हो सकता है। बहरहाल और भी चीज़ें हैं लेकिन वक्त महदूद है, चलते हैं एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लीची जाना पहचाना किस्म का फल है, बहरहाल महंगा है थोड़ा सा लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इसके फ़वाइद बताऊं, ख़रीदना आपका काम है। कहते हैं कि लीची के अंदर बिल्कुल सैचुरेटेड फैट्स, चर्बी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं होती और भरपूर होता है ये फाइबर से, वाइटामिन इसमें होते हैं और एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक चीज़ का नाम यहाँ लिखा हुआ है ओलिगोनोल, जो हमारे पास लीची के अंदर होता है, केमिकल होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी हमें जो है कैंसर वगैरह से अगर सादे लफ्ज़ों में बोलूं तो बचाता है और उसके साथ एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं नज़ले ज़ुकाम वगैरह से तो अगर आप इस लीची का इस्तेमाल करेंगे तो आप नज़ले ज़ुकाम से भी बचे रहेंगे। और जो चीज़ एक इसके बारे में लिखी है वो ये है कि बिल्कुल जैसे माल्टा और किन्नू टाइप के जो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर कहा जाता है कि विटामिन सी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर भी विटामिन सी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसका इस्तेमाल करें तो आपकी विटामिन सी जो है वो पूरी रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा। उसके अलावा कहा जाता है कि बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है जो ग्रुप है उसका, उसमें थायमिन नाइसिन और फोलेट्स जो हैं उसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है। आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में बी कॉम्प्लेक्स जो है आपको लीची से मिल जाता है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि आपके जो मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है उसको बहुत बेहतर तरीके से ये चलाता है। उसके अलावा कहा जाता है कि पोटाशियम और कॉपर की जो मकदार है वो इसके अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है और पोटाशियम के बारे में कहा जाता है कि वो जो दिल की धड़कन है उसको कंट्रोल रखने में और ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद देता है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स जो हैं, CHD जो है, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ जो है, इनसे भी बचाता है। और आखिरी में सर बताते चलूँ कि कॉपर की जो मकदार इसमें ज़्यादा है वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में बहुत मदद देता है। बहरहाल ये तो बात थी लीची की, चलेंगे आप जो है छोटी खूबसूरत से जो लीचियाँ बच्चे जो घरों में होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जी
जी डॉक्टर साहिबा, साथ ही बता रहे हैं कि 3-4 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हम बात कर रहे थे الرجک اور جو عام کھانسی نزلہ زکام والے ان کے بارے میں؟
جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ زیادہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس بیس پہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک خاص فصل میں, ایک خاص موسم میں جو ہے وہ بچوں کو کھانسی شروع ہو جائے. لیکن جبکہ دیکھا گیا ہے کہ جو نزلہ زکام والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سردی کے موسم میں جو ہے یہ کھانسی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ کھانسی ہو اور وہ کھانسی بھی جو ہے وہ اب ہوتا یہ ہے کہ نزلہ زکام چاہے ہو یا الرجک, دونوں میں جو ہے ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے, دونوں میں کھانسی ہوتے ہیں. لیکن جو نزلہ زکام کے کھانسی ہوتے ہیں وہ بچے کو جو ہے تھوڑا بہت ویک کر دیتے ہیں. ایک جو ہمارے پاس پوائنٹ ہوتے ہیں, بچے جو ہے وہ ایل نظر آتا ہے,
یعنی
ڈیلے سے پڑ جاتا ہے, اس کے جو کھانے پینے ہیں اس پہ فرق آ جاتا ہے. اور لیکن جبکہ الرجک میں جو ہے اسے کوئی خاص بات نہیں ہوتی, کیونکہ دونوں کے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مختلف ہے, اس لیے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنا اس میں ضروری ہے. الرجک کے لیے وہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس کو الرجن سے دور نہ کیا جائے تو اس کے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتے, یا جو ہے آپ اینٹی ہسٹامنس گروپس کے جو میڈیسنس ہوتے ہیں وہ دے دے. لیکن یہ بات خیال رکھے کہ ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو اینٹی ہسٹامین گروپ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو سیڈیٹ کر دیتے ہیں, یعنی بچے کو جو ہے وہ نیند آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے, یعنی ان کے جو آئی کیو لیول ہے اس پہ اس کا اثر پڑتا ہے. کیونکہ یہ جو ہمارے دماغ کے جو خون رسانی ہے, جو خون کا جو سسٹم ہے, اس میں سے یہ گزر جاتے ہیں اور دماغ پہ جا کے اثر کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ تھوڑا ایک سائڈ کی بات تھی, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ جو ہی کھانسی شروع ہو جائے تو اس کو یہ سارے جو ہے دے دیتے ہیں. خاص طور پر جو نزلہ زکام ہے اس کی دواؤں میں بھی جو ہے یہ اینٹی ہسٹامین گروپس کے میڈیسنس ہوتے ہیں. اچھا میں جلدی جلدی بتا رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ سارے جو ہے وہ کھانسی کو, ہر کھانسی کو نہیں دبانا چاہیے, لیکن جو کھانسی بہت شدید ہو اس میں, اور اگر کوئی کھانسی جو ہے, اب کالک کھانسی جو ہے اس کے وہ ویکسینس لگایا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر جو 3 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اگر ان کو ایسے کھانسی آ جائے جو قطار میں جو ہے وہ ہوتے ہیں, ایک مرتبہ شروع ہو جائے پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اگر ایسے کھانسی ہو تو اس میں جو ہے تھوڑا بہت کالک کھانسی کے لیے شک جا سکتا ہے, باوجود اس کا کہ ویکسین لگا چکے لیکن پھر بھی ڈاکٹر سے رجوع کرے. اب جو ہے میں نے یہ بتایا کہ 2 ہفتے سے اگر کھانسی زیادہ چلے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کرے, لیکن اس یہ ایک اونلی بات ہے. اب اگر کچھ ایسی کھانسی ہے جس کے ساتھ کوئی اور کچھ اور کمپلیکیشن ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ شروع میں ہی جو ہے وہ شروع سے ہی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اب انشاءاللہ اس کو آگے جو
انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس پر کافی گہری بات کریں گے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی گفتگو ہماری ڈاکٹر آغلہ حکیمی کے ساتھ. ہم ڈاکٹر آغلہ حکیمی سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ تشریف.
جی بہت
جی بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اتنی خوبصورت اور مفید گفتگو آپ لوگوں نے ناظرین کے لیے پیش کی. وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سا ترانہ سننے کا خواجہ امیری صاحب کی آواز میں, تو چلتے ہیں گانا سنتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین آپ لوگوں کو خوبصورت سی موسیقی خواجہ میری صاحب کی آواز میں سنی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. میں اس طرف آ جاتا ہوں یہاں پر کوٹ ٹاپ کے. یہاں پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے رباب, اور وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ قسمت پہ یقین نہیں رکھتے, بلکہ وہ اپنی کوشش اور جو ان کا ایمان ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں.
یہ وہی لوگ آگے جن کی میں نے بات کی تھی کہ بولتے ہیں کہ قسمت ہوتی ہی نہیں ہے. اور بالکل
البتہ جو یہ جب کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایمان کی بات جب آتی ہے تو ظاہری بات ہے ان کا ایمان سے مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ جو ان کا ایمان ہے جو
یقین اتنا مضبوط ہے.
بالکل بالکل. تو اس میں ایک چیز نقطہ جو آ جاتا ہے دوبارہ جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ایسے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے اور جو بھی نہیں دے رہا
وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے اور ان کے حق میں بہتر ہے. بالکل وہ اس پہ راضی ہیں. تو یہ بات بہت اچھی ہے, اگر ہر کوئی اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ لے تو کافی جو مشکلات ہیں زندگی
وہ حل ہو سکتی.
بالکل
بالکل. اچھا لیکن رباب ایک چیز یہاں پر اور بھی کہنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ شاید اس طرح اگر میں کہوں تو بہتر رہے گا کہ جو دلوں پہ دھول آ گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ جو رستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے, وہ ہدایت جو کرنا چاہتا ہے, اس میں تھوڑا سا جو ہے مسئلہ آ جاتا ہے. تھوڑی جیسے موبائل کی فون پہ جو آواز وہ خشخش جو شور آ رہا ہوتا ہے نا, کچھ ایسا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس رابطے کو جو ہے فائبر آپٹک کے ذریعے جوڑا رکھیں, ہم لوگ
مضبوط رکھیں اور برقرار رکھیں ہمیشہ. یہ بہت ضروری ہے.
ہمارا جو ہے فون لائن پہ ہماری جو ہے مذہبی امور کی ماہر موجود ہیں
ارم نقوی صاحبہ. ہمارے ساتھ ہوں گے کہ میں غلط نہ بولا میں نے. جی اصل جی نہیں, ہمیں کہا جا رہا ہے ہمیں ایک کلپ دیکھنا ہے.
جی کلپ بھی دیکھ لیتے ہیں, اس مسئلہ نہیں ہے. کلپ اگر آپ کہتے ہیں تو کلپ دیکھ لیتے ہیں. میں سلام عرض کرتا ہوں ارم صاحبہ کی خدمت میں, اگر آپ آواز سن رہی ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں ہم.
हेलो, अस्सलाम
वालेकुम जी। ठीक है जी, देखिए जी मसला हल हो गया। हम जा रहे थे क्लिप देखने के लिए इरम नकवी साहब, लेकिन आपकी आवाज आ गई। बहुत बहुत सलाम अर्ज करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुई।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे
हैं
आप लोग?
जी अल्लाह का शुक्र
जी। मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि इरम नकवी साहिबा, कि हमारे दीन इस्लाम में किस्मत के मुतल्लिक क्या कहा गया है? आया किस्मत है नहीं है, इस बारे में क्या कहा गया है?
बिल्कुल जी, किस्मत, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, किस्मत है और इसको हम बिल्कुल यकीन रखते हैं। कोई भी चीज़ जो है, अब देखें आप, कभी आपने मिसाल के तौर पे हम निकलते हैं खुदा ना खास्ता, कभी आप देखें गाड़ी जो है इंसान को लग जाती है, कभी एक्सीडेंट पेज जो आते हैं, ये सब वो है जिसके लिए वो, यानी वो खुद कोई भी जानबूझ के नहीं चाहता कि गाड़ी के सामने जाके खड़ा हो जाए, इस तरह से उसके साथ ये हादसा पेश आए। तो ये सब वो किस्मत में जिसे कहना चाहिए, ठीक है इंसान एहतियाती तदाबीर अपने तौर पर करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके साथ पेश आ जाती हैं।
वो इरम नकवी साहब, ये भी कहा जाता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है अपनी मेहनत से अपनी लगन से, आया ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि ऐसा है या नहीं, जो लिख दिया गया है वही हमारी किस्मत है?
बिल्कुल, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। कभी आप देखती हैं हालात ऐसे होते हैं कि इंसान देख रहा होता है कि ये चीज रास्ते की तरफ जाएगा लेकिन उसको जो है कामयाबी नहीं होगी या जो मकसद उसको हासिल नहीं होगा, फिर भी वो कोशिश करता है, तो उसमें फिर हम नहीं कह सकते कि अब ये किस्मत थी कि इसने ये करना है। तो आंखें बंद करके जब एक इंसान काम करेगा तो उसमें कोई किस्मत का दखल नहीं होगा।
सही है।
जैसे हम कहते हैं कि कोई इंसान अपना एक बिजनेस शुरू करता है, कभी होता है तमाम उसके जो है जवानब देख के उसमें जो सरमाया गुजारी करता है, लोगों से मशवरा करता है, सब पूछता है, लेकिन फिर भी जो है वो कामयाब नहीं होता। उसमें कभी क्या होता, उसमें कभी इंसान को नहीं भी पता होता, हालात ऐसे पेश आ जाते हैं, इकोनॉमिकली ऐसे वो हो जाते हैं कि मुश्किलात पेश आ जाती हैं, बिजनेस उसका जो है वो खत्म हो जाता है। तो कभी होता है कि इंसान तमाम चीजें देख के काम करता है फिर भी उसके साथ ही होता है, और कभी होता है कि आंखें बंद करके एक चीज शुरू करता है और फिर उसके साथ ही होता है। तो ये दो मुख्तलिफ हालात हैं।
सही। अच्छा इरम साहिबा, एक और जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था वो ये है कि कहते हैं कि दुआ भी ज़रूरी है, दवा भी ज़रूरी है। कुछ लोग इस लाइन पर चढ़ जाते हैं कि जी हम सिर्फ अपनी जो है मेहनत है उस पर यकीन रखते हैं, और शायद कुछ ऐसे लोग भी दिखने में आपको मिलेंगे कि वो सिर्फ कहते हैं कि जी हम दुआ बस करते रहें तो हमारा काम हल हो जाएगा। ऐसे लोगों के क्या आप कहना चाहेंगी कि कौन सा रास्ता दुरुस्त है, कौन सा गलत है?
हाँ जी बिल्कुल, दुआ और दवा दोनों, दुआ तो आपको पता है कि मोमिन का असला है लेकिन उसके लिए दवा भी। आप एक इसकी एक वही मिसाल के साथ वाजे करती हूँ कि इंसान आप देखें कोई बीमार है वो सिर्फ दुआ करता चला जाए लेकिन उसका इलाज ना करे, दवा ना खाए, अपना परहेज ना करे, तो वो दुआ भी जाहिर है वो खुद देख रहा है कि जो चीज़ उसको दुआ को पूरा करने में उसकी मदद करेंगी, जब वो काम अंजाम नहीं दे रहा तो वो दुआ किस तरह से पूरी होगी।
सही है, ठीक। अच्छा जी जी इरम साहब
जी, मैं वही कह रही हूँ कि उसके लिए दवा और दुआ दोनों साथ जरूरी होती हैं, लेकिन दुआ तो बहरहाल जिसे कहना चाहिए मोमिन का असला है और वो तो हर वक्त इंसान बेहतरी के लिए दुआ कर सकते हैं।
अच्छा इरम साहब, मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, टाइम हमारा थोड़ा सा महदूद रह गया। कहते हैं कि इंसान, जो आपने भी कहा कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, अपनी जिंदगी की जो ऊंचाई निचाई है वो उसके अपने हाथ में होती है, क्या किया जाए कि तकदीर एक शख्स की अच्छी लिखी जाए?
ये तो हम जो दुनियावी हालात हैं उसके मद्देनजर देखें कि इंसान को, कभी आप खुद देखें, आप महसूस होते हैं इंसान को, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे दीनी दुनियावी कोई फायदा है नहीं है, तो फिर ये तो इंसान खुद वाजे होता है उसके लिए,
ठीक है,
यानी जो रास्ते हमें बता दिए गए ये रास्ता तुम्हें इस तरफ ले जाएगा, ये रास्ता इस तरफ ले जाएगा।
सही है,
इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा इंतखाब करता है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरम नकवी साहबा, आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया, हमारे नाजरीन के लिए में टाइम दिया, इतनी मुफीद गुफ्तगू की, बहुत बहुत शुक्रिया
जी। बहुत शुक्रिया, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपसे इजाजत चाहते हैं और हमारे साथी हमें बता रहे हैं कि हमें भी एक छोटा सा वक्फा लेना है और फिर अपनी नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होते हैं।
जी, जो ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
शामदीद कहते हैं, नाजरीन वक्त ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताने चलूँ, कल डॉक्टर फाहद साकिब लोबदी हमारे साथ होंगे और हम बढ़े हुए ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। कोई भी सवाल इस मुतल्लिक आपके पास हो तो हमसे ज़रूर बताइएगा, हम उसी वक्त आपके सवाल का जवाब लेके डॉक्टर साहब सबको देंगे।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक जो शेर इकबाल लाहौरी का पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, जो थोड़ा बहुत जो है किस्मत तकदीर से जुड़ा हुआ है और जाना पहचाना शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना क्या खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अलबत्ते मैंने मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें कोई कहीं पर जो है डंडी मार दी है, लेकिन ये कि मतलब कहने का ये है कि इंसान अपनी शख्सियत को इतना ऊपर लेके जाए, इतना ईमान को अपना इतना ऊपर लेके जाए کہ جو سارے مسائل ہیں وہ ہٹ جائیں اور آپ کو رستہ جو ہے واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائے.
جی اپنا بس یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی ناظرین, ان تمام ناظرین نے جو ہمارے پیج کو لائک کیا, جو فیس بک پیج پہ ہے, یا ہمارے پروگرام کو لائک کیا, بہت بہت شکریہ. کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں مجھے نام یاد نہیں, لیکن ان تمام ناظرین کا میں تہ دل سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ کی ای میلز, آپ کے جو کمنٹس ہیں, ہمارے پروگرام ایک جان سا بھر دیتا ہے, ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمیں ای میل اور کمنٹس کرتے رہیے گا. جی
جی بالکل, بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور روباب کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.